یہ عراقی ہماری لشکر گاہ میں کیا کر رہا ہے؟
شاید مختار کے ظلم کی وجہ سے ہماری فوج کی پناہ لی ہے اس نے.
افسوس سے کیا حال بنا رکھا ہے اس کا.
دیکھ تو رہے ہو ہمارا جاسوس ہے, پکڑا گیا ہوگا.
یہ آنکھ کان اور زبان کا حیوان آخر ہماری کس پہیلی کا جواب ہے؟ قابل علاج نہیں ہے, مار ڈالو اسے. اس کے کرانے نے سب کو پاگل کر دیا ہے.
یہ احمق کہیں کا پوری فوج کے لیے تاؤن کی وبا بن گیا ہے. میری عزت تو اس نے برباد کر ہی دی, ساتھ ہی اپنی سرداری کی بھی لاج نہ رکھی.
اس گدھے کا کیا قصور ہے؟ قصور بار تو وہ شخص ہے جس نے اس بے سر و پا بے وقوف کو ایک حساس ذمہ داری کے لیے بھیجا تھا.
جناب محلب, میں نے ایک پورا دستہ مختار کے لشکر کی جانب بھیجا تھا جن میں سے صرف ایک ان کے ہاتھ لگ گیا. یہ میرا گناہ ہے؟ یہ بےہودہ آدمی اگر ایک گھوڑے کی زین کی لالچ میں نہ پھنستا تو پکڑا نہ جاتا.
بظاہر بن شمیت اس ضربہ سے ہماری سپہ سالاری کے قلب پر حملہ کر گیا ہے. یہ کون سا لڑنے کا وقت ہے؟
اپنے اس میدان جنگ کے معجزہ نما اور غیبی حملوں کے مدبر بڈھے سے ہی پوچھیے شہزادے, ہم صرف حکم کی اطاعت کرنے والے ماتحت ہیں.
بہت گرم مزاجی دکھا رہے ہو. میرا مقصد آپ پر طنز و طعنہ لگانا ہرگز نہیں ہے. آپ نے ماضی میں اپنی مہارت اور قابلیت کو خوب ثابت کیا ہے. بس فوری طور پر اس عذاب سے گھرے ہوئے کی دل خراش آواز کا سردباب کیجیے. یہ جو سب کو پریشان کر رہی ہے, اس ہیبتناک آواز کے ہوتے ہوئے ہم دشمن کی ضربت کی روک تھام نہیں کر سکتے.
اٹھ جا منو شخص, تجھے 1000 دفعہ بھی مار دیا جائے تب بھی تیری حماقتوں کو نہیں مارا جا سکتا.
امیر, کیا اجازت ہے کہ حقیر کچھ اظہار رائے کرے؟
اظہار رائے کس بارے میں؟
اس افسوسناک اور مضحکہ خیز واقعے کے بارے میں.
مضحکہ خیز؟ کہاں سے مضحکہ خیز؟
معافی چاہتا ہوں شہزادے, جان لیجیے کہ عوام الناس اس دم کٹے عرب کا قصہ سننے کے بعد ہم پر اور ہماری سوچ پر خوب ہنسیں گے. اگر کوئی ذرا سا بھی مختار کو جانتا ہو تو اسے یہ معلوم ہوگا کہ اس کے لشکر میں عرب اور عجم کا فتنہ کھڑا کرنا پتھر میں کیل ٹھوکنے کے برابر ہے.
وہ بھی ایک ابو عمرہ جیسے اجدہ کے ہوتے ہوئے.
اس کے علاوہ کوئی بھی لڑائی اس وقت کارساز ہوا کرتی ہے جب دونوں جانب ایک جتنی قدرت ہو. ہم سبھی جانتے ہیں کہ مختار کے لشکر کی اکثریت عجم حضرات کی ہے, عرب اقلیت میں ہے. فرض کریں کہ یہ چال ضائع نہ ہوتے اور عرب و عجم میں جھگڑا ہو بھی جاتا, پھر بھی مختار کے لشکر کو کوئی خاص نقصان نہیں پہنچتا.
جناب بنور, ایک ایسی شخصیت کے عامل ہے جن کی قدر کرنی چاہیے. اب تک آپ اور آپ کی حکومت کی خاصی خدمت کر چکا ہے, مگر وہ نوجوان اور شہرت کا خواہ ہے. خام خیالی نوجوانوں کی خاصیت ہے. اگر اگلے حملوں کے سلسلے میں امیر ان حقیروں کی رائے پر توجہ دیں تو نقصان نہ اٹھائیں گے.
عرب اور عجم کی لڑائی کا نقشہ میں نے کھینچا تھا اور جناب حر کو صرف اس کی ذمہ داری سونپی گئی تھی. آپ کے بقول یہ مسئلہ ہر لحاظ سے ہمارے لیے ضروری تھا. جس قدر دشمن ہمیں اور ہماری چالوں کو کمزور اور بچکانا سمجھے, ہمارے لیے اتنا ہی اچھا ہوگا.
وہ کیسے؟
زیادہ وضاحت کے معاملے میں مجھے معاف کیجیے, بہتر یہی ہوگا کہ جنگ کے اسرار نتیجے پر پہنچنے تک پوشیدہ ہی رہیں.
قوم کا کینا بھی عجیب, اتنا عرب اور عجم کا ڈھول پیٹیں گے کہ ہمیں مختار کی نظر سے گرا.
سننے والے کو عقل مند ہونا چاہیے. اس قدر محلب محلب کی باتیں اڑی ہوئی, مجھے تو لگتا تھا کہ کوئی دو منہ والا اژدہا ہوگا جس کے ایک منہ سے آگ نکلتی ہے اور دوسرے منہ سے عمر و آس کی باتیں. لیکن یہ نامور کھلاڑی تو چڑیا کسا دماغ رکھتا ہے.
اگر مختار کے لشکر میں عرب اور عجم میں جدائی پڑنے والی ہوتی تو ابن مرجانہ کبھی ابن زبیر کے لیے بازی چھوڑ کے نہ جاتا. محلب تو کچھ زیادہ ہی خام خیالی رکھتا ہے. افسوس ہوتا ہے مصعب کے حال پر کہ جو ایک ایسے شخص کی باتوں پر کان دھرتا ہے۔
کیا کہہ سکتا ہوں اس پر؟ مجھے تو ڈر ہے کہ یہ سب کوئی خفیہ چال ہے۔
میں نے تو مولا علی کی عادلانہ حکومت کا رنگ دیکھ لیا۔ مختار اسی عدل و انصاف کی تقلید کرتا ہے، ناممکن ہے کہ وہ دشمن کو اس کھیل میں جیتنے دے۔
عجب، مختار کے فدائی ہیں، ہم نے اپنی جان پر ان کی بیعت کی ہے۔ موسم اور محلب کی چال غیر سنجیدہ ہے۔
مجھے اب یقین آیا کہ مختار کی رائے زبیریوں کے بارے میں حقیقت پر مبنی تھی۔ وہ لوگ دھوکے اور بناوٹ کی نسل ہیں، ان کے ہر کردار پر شک کرنا چاہیے۔
رک جاؤ محلب، بیٹھو۔ دشمن کی چال کچھ سمجھ میں آئی تمہیں؟ کیا تم سمجھ گئے کہ بن شمیت ایک کبھی نہ ہارنے والا رقیب ہے؟ اب کس سمت سے اس پر حملہ کرو گے؟
دین اور شریعت کی سمت سے۔ اس کی اردوگاہ کی طرف ایک ایسا سفیر بھیجو جو شریعت سے بخوبی واقف ہو اور نامور ترین جنگجو بھی ہو۔ اسے کہو کہ بن شمیت کو یہ سمجھائے کہ مسلمانوں کے قتل عام کی اس جنگ میں پیش قدمی نہ کرے۔
عباد ابن حسین شریعت پر بھی مسلط ہے اور فنون جنگ کے معاملے میں بھی ایک عجوبہ ہے۔
منظور ہے، عباد کو خاص طور پر یہ تاکید کرنا کہ وہ بن وہب کی موجودگی میں ہی بن شمیت سے بات چیت کرے۔
بن وہب؟
میں نے سنا ہے کہ بن وہب اور بن شمیت دونوں بہت گہرے دوست ہیں، گویا بھائی چارے کا عقد کر چکے ہیں۔ بن وہب ہماری طرح ہے، عرب کی قوم کو عجم سے برتر جانتا ہے۔
عجموں کے ایسا ساتھ مختار کی نسبت کسی میٹھے پانی کی بہتی ہوئی نہر کے مانند ہیں۔ اگر یہ لوگ جوش میں آ جائیں تو ہر بڑے سے بڑے سد راہ کو ویران کر سکتے ہیں۔ کس سوچ میں گم ہو؟
معافی چاہتا ہوں امیر، میں آپ کی طرح نہیں سوچتا۔
کس بارے میں؟
عجموں کے بارے میں۔
جب کسی کا دائیں ہاتھ اس کی فکر کا مخالف ہو تو کیا نتیجہ نکلتا ہے؟ دماغ حکم دیتا ہے کہ دشمن کے سر پہ مارو اور ہاتھ اپنے ہی سر پہ مار دیتا ہے۔
میں سنجیدہ ہوں امیر، عجموں کے مختار کے متعلق احساسات صرف مبالغہ ہیں اور شاید دکھاوا بھی۔ وہ لوگ مختار کی نوکری کرتے ہیں کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ اس کے ذریعے سے ہی اپنے پرانے زخموں پر مرہم لگا سکتے ہیں۔
کیسا پرانا زخم؟ کون سا مرہم؟
قادسیہ میرے بھائی، قادسیہ۔ وہ لوگ مختار پر اس لیے فدا ہو رہے ہیں تاکہ اس طرح سے عربوں سے قادسیہ کا بدلہ لے سکے۔
استغفار کرو بندہ خدا، اگر میں تمہیں جانتا نہیں تو ضرور یہ سمجھ لیتا کہ دشمن کے بھیجے ہوئے آدمی ہو تم۔ عجم سلمان فارسی کے وارث ہیں، وہ لوگ مختار کی عدالت کے عاشق ہیں جو کہ ہماری مولا علی کا طریقہ ہے۔
ہاں خدا کرے ایسا ہی ہو۔
مجھے تو حیرت ہے کہ یہ سوچ تمہارے دماغ میں کیسے آ گئی۔ تم اپنی آنکھوں سے خود دیکھ چکے ہو کہ عرب اور عجم کے جھگڑے میں جو کہ دشمن کا فتنہ تھا، ابو عمران نے کیا کارنامہ دکھایا۔
آئے ہائے، میں ابو عمرہ کے چال چلن کو دیکھ کر ایک ہزار دلائل سے ثابت کر سکتا ہوں کہ اس کے ہر عمل کے پیچھے ایک راز چھپا ہوا ہے۔
میں حاضر ہوں امیر۔
عباد، تم نے وہ واقعات سنے جو ابھی پیش آئے تھے؟
جی امیر۔ آپ سے کیا چھپانا، مجھے بہت ہی حیرت ہوئی۔ توقع نہ تھی کہ محلب اس طرح اندھیرے میں تیر چلائے گا۔
محلب نے تیر صحیح جگہ چلایا ہے، مگر دشمن ایک ہوشیار اور ذہین رقیب ہے۔ بن شمیت نے ثابت کر دیا ہے کہ وہ مختار جیسے شخص کا تربیت یافتہ ہے۔ میں تم سے یہ چاہتا ہوں کہ تم صلح کے سفیر بن جاؤ اور کچھ ایسا کر دکھاؤ کہ بن شمیت اپنی غلط شریعت پر شک کرنے لگے۔
امید کرتا ہوں کہ امیر کے حضور میری عزت رہ جائے۔
तुम ये कर सकते हो बात? बिन शुमैत का एक मुशीर है जिसका नाम है बिन वहाब, जो अरबी रगे रखता है। सुना है हर वक्त वो दोनों साथ ही रहते हैं। अगर वो ना हुआ तो शर्त रख देना कि वो तुम्हारे और बिन शुमैत के मुजाकरात में मौजूद हो। जाओ।
अमीर का हुक्म सर आंखों पर।
हकीकतन सफीर सुलह हो या हमारी लश्करगाह में जासूसी करने आए हो?
जनाब बिन शुमैत, क्या मैंने आपकी कोई तौहीन की?
नहीं।
तो फिर आप अपने मेहमान की तौहीन क्यों कर रहे हैं?
क्या हमने आपकी तौहीन की है?
मैं मुसफ के लश्कर के बड़े ओहदेदारों में से हूं। मुझे जासूस का नाम देना मेरी शान मंजिलत की तौहीन नहीं है क्या?
ऐ सुलह के सफीर, आप नाराज ना हो, इन्हें इल्मे गायब पर भी दस्तरस नहीं और दिमाग पढ़ना भी नहीं आता। लिहाजा आपकी पेशानी देखकर ये नहीं समझ सकते कि आपका ओहदा क्या है। समझ रहे हैं ना?
चलिए असल मौजू पर आते हैं। आपका पैगाम क्या है?
ये जंग मुसलमानों के मफादात के खिलाफ है। आप लोग जुबैरी खलीफा की बैत कर लीजिए और इस गुनाह कबीरा के मुर्तकिब ना हों।
मरहबा मरहबा, वाकयन उम्मत मुस्लिमा के लिए फिक्रमंद होना बड़ा अजर रखता है। जहां तक मुझे याद है, अमीर मुख्तार ने मक्का मुकर्रमा में खलीफा जुबैरी की बैत की थी और खलीफा ने भी उनसे कूफे की इमारत का वादा किया था। और मुझे यह भी याद है कि खलीफा ने शुरुआत में फर्जंदे रसूल के खून के इंतकाम का नारा भी लगाया था। अब आप ही बताइए कि हम और आप एक दूसरे के खिलाफ फिर क्यों खड़े हो गए? कातिलाने फर्जंदे रसूल में कुछ अफराद आपके लश्कर में भी हैं, उन्हें हवाले कर दीजिए और झगड़ा खत्म।
चंद मजबूर और बेसहारा लोगों को बांध के दे देना मुसलमानों का तरीका नहीं है। हमारे दीन मुबीन में उल्फत और रहमत पाई जाती है। अगर कैदियों के साथ रसूलुल्लाह के सलूक और सुनत हसना को याद करेंगे तो आप समझ जाएंगे कि आपका मुतालबा बातिल और हराम है। दो तीन मुजरिमों के बहाने आप चाहते हैं कि हजारों मुसलमानों का खून बहा दें? किस बिना पे आप इस बात को शरई फरीजा समझते हैं?
सुफियानियों ने बारहा इन बेतुकी दलीलों के जरिए शियों को धोखा दिया है। आप खामोखा अपना वक्त बर्बाद ना करें।
खामोश क्यों है बात? कुछ तो बोलो। तुमने हमारे दुश्मन को कैसा पाया?
जख्मी और सख्त मिजाज मुख्तार और उसके मानने वाले जुबैरी खलीफा को झूठा, रियाकार और वादा खिलाफ जानते हैं। उन लोगों ने खलीफा के इंतकाम हुसैन के नारे को बहाना बना के चारों तरफ ये ढंडोरा पीट दिया है कि ऐ लोगों सुनो, इससे बढ़कर झूठ क्या होगा? जो खलीफा कल तक इंतकाम हुसैन का दावा रखता था, आज वो कातलाने हुसैन के साथ मुत्तहिद हो गया है और हमारे खिलाफ लश्कर कशी कर रहा है। मक्के में हाशियों के साथ बुरा सलूक और वो भी खलीफा के हुकूम पर एक बड़ी सनत बन गया है। ये सारी बातें इराक के लोगों को खलीफा के खिलाफ कर रही हैं और इसी बात ने हमारे काम को मजीद दुश्वार बना दिया है।
बज़ाहिर आपके गैर मरई तीर पत्थर पे जा लगे हैं, गोया मुख्तार के हाथों में आसाए मूसा है जो अजदहा बन गई है और तुम्हारे जादुई सांपों को डस रही है।
मुख्तार कोई छोटा हरीफ नहीं है अमीर, वो सियासत के मैदान का जादूगर और मैदान जंग का मोजिज नुमा कहलाया जाता है। वो हमारी एकाध साजिशी तदबीर से तो मगलूब नहीं हो सकता ना, मगर फिर भी मैं नहीं समझता कि मेरे तीर पत्थर पर जा लगी हूं। अभी तक मुझे बिन वहाब से काफी उम्मीद है, जरा सा हौसला और सब्र चाहिए।
कमान वालों चलो।
देखा तुमने मोहल्लब, देखा ना कि इन हरामजादों पर भरोसा नहीं किया जा सकता।
क्या तुम्हें वाकई ये तवक्को थी कि ये लोग बगैर चूचरा के मैदान में चले जाएंगे?
तो फिर ये लोग हमारे साथ क्यों हैं?
क्योंकि उन्हें आपकी हिमायत की जरूरत थी।
कम हिमायत की है क्या हमने उनकी?
नहीं, जितनी हिमायत आपने की है उसके मुताबिक ये लोग आपके लश्कर में आपके साथ खड़े हैं। इनके खून की कीमत नहीं, ये मैदान में उतर जाएंगे।
सही।
بیعت کرنے والوں، اے خلیفہ بارک کے وفاداروں، واپس لوٹتے ہیں، ہمارے ساتھ خیانت کی گئی ہے، واپس چلو، پیچھے ہٹو۔
ان کا پیچھا مت کرو۔
جی امیر۔ جہاد کے لیے آئے ہو یا تماشا دیکھنے؟
فی الحال تو ہم لوگ جہاد کا تماشا دیکھنے کے لیے بلائے گئے ہیں۔ آپ کی شجاعت دیکھ کر بہت مزہ آیا۔
صحیح، تو پھر حملے کی رضامندی کیوں دی تھی؟
اس چوچرا کا آپ سے کوئی تعلق نہیں۔ جب کبھی نقشہ کھینچنے والے نے سوال پوچھا، ان کا جواب میں دے دوں گا۔
شاباش دلاور، مرحبا۔
شاباش ہمارے شیر، کیا کارنامہ دکھایا ہے تم نے۔
محلب، یہی تھا؟
ابھی فیصلہ نہیں کیا جا سکتا شیخ۔
منہ توڑ تماشا مارا ہے تم نے زبیر کے بیٹے کو، مرحبا۔
مذاق اڑایا ہے تم لوگوں نے ہمارا۔
اپنے غصے
چپ رہو محلب۔ تم اور تمہاری پیشن گوئیوں کی عزت و احترام اپنی جگہ پر۔ جنگ کا کوئی قاعدہ اور قانون ہوتا ہے۔ ہماری آج کی جنگ کا نام مذاق تھا۔ اس شکاری کا مذاق جو شیر کو سمجھے بغیر شیر کو شکار کرنے چلا گیا اور اسے دیکھتے ہی اس کی ہیبت سے خوف زدہ ہو گیا اور بھاگ کر واپس آ گیا۔ جنگ شروع کرنے کا مطلب ہوتا ہے پنج آزمائی۔ آج آپ حضرات کی بے حفاظت کی وجہ سے بن کامل شاکری نے عباد ابن حسین کو میدان میں ہرا دیا۔
خدا گواہ ہے کہ میں نے ذرہ برابر بھی بے وفائی نہیں کی۔ یہ ناچیز آپ کی درایت کے تحت شیر کو پہچاننے پر مامور ہوا تھا اور اس کی ہیبت اور قدرت کا علم رکھتے ہوئے میدان میں گیا اور اپنی توانائی کے مطابق آگے بڑھا اور کاری ضرب لگائی، مگر آگے پیچھے اور دائیں بائیں جانب سے میری حمایت ہونی چاہیے تھی جو کہ نہیں ہوئی، مجبوراً مجھے پیچھے ہٹنا پڑا۔
ان حضرات سے پوچھو کہ تمہاری حمایت کیوں نہیں کی۔ انہوں نے کہا ہے یہ منحوس شبس۔
یہ شبس آج کل شبس نہیں ہے، شبی ہے۔
اچھا، کیا یہ تم لوگوں کی نئی چال ہے؟ کل تک تو شبس تم لوگوں کا ذہین ترین سیاستدان تھا۔ یہ کیسا سایہ ہے کہ حضرات اس کے اشاروں پر چلتے ہیں اور اس کی اجازت کے بغیر پانی بھی نہیں پیتے ہیں؟ شبس اگر عباد کی حمایت پر نہیں گیا تو تم لوگوں نے کیوں کچھ نہیں کیا؟
ہم جب چلنے کے لیے تیار ہوئے تو ہم نے جنگ روکنے کا نکارہ سنا اور خاموش کھڑے رہ گئے۔
یہ جھوٹ ہے بھائی، عباد کے حملے کے دوران میں ان لوگوں کو بغور دیکھ رہا تھا۔ ان کا جائزہ لینے کے لیے میں شبس کے کچھ قریب ہوا، مگر ایسے قریب ہوا کہ یہ لوگ مجھے نہ دیکھ سکیں۔ میں نے دیکھا یہ لوگ عباد کی حمایت کے لیے آپس میں مشورہ کر رہے تھے۔ شبس کا کہنا تھا کہ ایسی جگہ کھڑے ہوں جہاں سے دیکھے نہ جائیں۔
مجھے معلوم ہے جعفر، معلوم ہے مجھے۔ شبس کے پچھلے چند دنوں سے اس چوہے بلی کے کھیل نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ اس کا ہمارے لشکر میں ہونا ایک سائے کی مانند ہے۔ وہ موجود ہے بھی اور نہیں بھی، اس کی سیاست ان لوگوں میں بھی سرایت کرتی جا رہی ہے۔ اب یہ لوگ دور ہی کھڑے ہوا کریں گے اور جنگ کا نظارہ دیکھیں گے اور اپنے دل میں ہم پر اور ہماری حماقتوں پر کہہ کہا لگا کر ہنسیں گے۔ کتنا احمق گدا ہے۔ हम इस पर सवारी करते रहेंगे और इस कौम के पीछे चलते रहेंगे। मुमकिन है देर से मंजिल को पहुंचे, मगर सही सलामत पहुंचेंगे।
क्या मैं भी इस मिसाल की जद में निशाना बन रहा हूँ?
बात का रुख मत मोड़ो बेअदब।
बदतमीज तुम हो जो अमीर की मौजूदगी में उनकी जगह बात कर रहे हो शहजादे। मैंने अमीर से पूछा है, तुमसे नहीं।
इब्ने होर, मोहल्लब की तदबीर के मुताबिक आज तो तुम्हें कुछ भी नहीं करना था। बेहतर यह होगा कि तुम चुप रहो और अपनी दुम को इस गिरोह की दुम से ना बांधो।
जी अमीर।
मैंने हुक्म किया कि चुप रहो, ना के चले जाओ। कान खोल के सुन लो बिन अशस, और तुम भी बिन हज्जाज, आज बनी जुबैर की हुकूमत को तुम जैसों और तुम्हारे उस अकले कुल शबस को पना देने और तुम लोगों पर भरोसा करने का खमियाजा भुगतना पड़ रहा है। तुम लोग वो अफराद हो जिनके हाथ कोहनियों तक अहले बैत रसूल के खून से आलूदा है, फिर भी तौबा का दामन थाम लिया। बहुत खूब। मेरे बड़े भाई जनाब खलीफा और मैंने इस बदनामी को कबूल किया ताकि रसूल अल्लाह की सुन्नत की पासदारी करें। अगर अब भी बाज नहीं आओगे और पहले की तरह चालाकी और मक्कारी दिखाओगे तो मेरे पास इसके सिवा और कोई चाराकार ना होगा कि तुम लोगों को मुख्तार के हवाले कर दूं और इस तनाजे को खत्म कर दूं।
अमीर, कुछ तो पर्दापोशी कीजिए।
मोहल्लब, ये वाकया कोई सियासतबाजी नहीं है जो तुम जैसों की जहानत से हल की जाए। इस गिरोह ने लश्कर की आंखों के सामने हमसे खयानत की है, वो भी उस शख्स के हुक्म पर जो इनके सरों पर साया है और मेरी नजर में भेड़िया है। जब हमसे पना मांगने आया तो सर से पैर तक शर्मिंदगी और जिल्लत से भरा हुआ था। हमने दिलसोजी और फर्ज के तहत उस पर होने वाले जुल्म के खिलाफ कदम उठाया, मगर आज वो इन हजरात की गर्दनों जितनी मोटी दुम निकाल के हिला रहा है। वो खुद तो सामने आता नहीं, साथ ही इनकी हिमायत में भी रुकावट बन रहा है। क्या यही इंसाफ है?
जनाबे अमीर, आपको गुस्सा होने का हक है और फैसले के मामले में इंसाफ का दामन छोड़ने का भी। शबस को इबाद की हिमायत नहीं करनी थी। मैंने इबाद की परेशानी के पूरे दौरानिये में उसे मनाने की पूरी कोशिश की, मगर कोई फायदा ना हुआ। बहरहाल कल भी जंग होनी है। कल मैं मैदान में जाऊंगा और आप देखेंगे कि मैं किस तरह मजूसियों के लश्कर का कला कमा करता हूँ।
देखते हैं तुम क्या करते हो। जा सकते हैं आप।
आज आप लोगों ने वो काम कर दिखाया है कि अगर बनी जुबैर के पास जरा सी भी अकल मौजूद हो तो उन्हें अपना साजो सामान जमा करके चले जाना चाहिए चरवाहों वाले मशगले की तरफ।
अमीर, ये बईद है कि इन्हें भेड़े चराने का काम आता हो। अलबत्ता ऊंट चरा सकते हैं। अब तक जुबैर के ऊँटों का रेवड़ बसरा में काफी मशहूर है।
जरबुल मसल में मुनाकिशा नहीं होता। अब वो लोग चाहे भेड़े चराएं या फिर ऊंट, ये तो तय है कि ये लोग हुकूमत और सियासत के अहल नहीं हैं।
ये नुक्ता महले फिक्र है और ऐसा नतीजा निकलना जंग के नतीजे पर असरअंदाज होता है। अमीर, आप इस नतीजे तक कैसे पहुंचे?
आज तक मैं ये समझता था कि मोहल्लब का मुसब की फौज में मौजूद होना बहुत जल्द कामयाबी से हमकिनार करा सकता है। उनकी आज की आराइश से ये पता चलता है कि मुसब के सरदारों में से हर एक ने अपनी अपनी मनमानी शुरू कर दी है। इबाद को मैदान में भेज रहे हैं, वो भी उसकी हिमायत के बगैर। यानी ये उनकी मुश्तरका तदबीर नहीं है। हम इसी कमजोरी के नुक्ते से दुश्मन की गर्दन दबोच सकते हैं। अबू उमरा, परेशान हो मेरे भाई?
मेरी पेशानी की गिरा को दिल की आंखों से देखिए अमीर। मैं अब तक उन भाइयों की जानिब से कुड़ रहा हूं जो ये समझते हैं कि मैंने उनके मुतालिक जुल्म किया है। मुझे उस वक्त सुकून मिलेगा जब मैं बीच मैदान में खड़ा होऊंगा।
कल भी कारनामे दिखाने का दिन है। तुम मुश्किल दिनों के लिए बचाया हुआ खजाना हो। मैं अबू उमरा के तजुर्बात और जंगी तवानाई पर शर्त लगाने के लिए भी तैयार हूं।
ममनून हूं अमीर, मैं सरापा तस्लीम और ताबे हूं।
यकीनन कल अली के मुरीदों के कारनामे दिखाने का दिन है। जाइए और तैयारी कीजिए। इब्ने वहब।
जी अमीर।
आओ बैठो। तुम्हारे ख्याल से अबू उमरा उदास क्यों था?
ये बात वाज़े है कि वो उदास इसलिए था क्योंकि वो लश्कर का सिपाही सरार नहीं है।
क्या मतलब?
एक बात बताइए अमीर, आखिर क्यों अबू उमरा के होते हुए जो कुछ अरसा पहले तक मुख्तार का दाया बाजू था, हरूरा की सिपा सालारी आपके हवाले कर दी गई?
ये अमीर मुख्तार की मर्जी है, यकीनन मुझे सिपे सलार बनाने में कोई मसलहत होगी।
बाज़ औक़ात आपका सीधापन मुझे डरा देता है अमीर। एक दिन था कि जब अबू उमरा कयाम का सबसे पहला फर्द था, उसने बहुत सी फतुहात की है, मुख्तार के खुफिया आदमियों का सरदार था, और आज एक आम सा सिपाही है आपकी रकाब में, आम सिपाही। इतना बड़ा फर्क आपके लिए बेमायनी है?
मसलन कौन सा मतलब?
अबू उमरा मुख्तार की नजरों से गिर गया है, इसकी चूंचरों को मैं नहीं जानता। वो हरूरा आया है ताकि अपनी इज्जत दोबारा कमा सके।
खुल के बात करो, कैसी इज्जत?
अबू उमरा हरूरा में खुलकर कोई कारनामा नहीं दिखाएगा ताकि मुख्तार को यह साबित कर सके कि वो अब भी कयाम का पहला फर्द है। शायद उसने कोई तदबीर बना रखी हो कि हम हरूरा में बिन शुमैत की सिपा सलारी में हार जाएं, और यकीनन उसकी ये लिहाज बाजियां भी मुंह छुपा के रहने के लिए हैं।
ये नामुमकिन है। तुम जाती तौर पर अजमों के खिलाफ हो।
मुखालिफ होना और शक करना बुरा तो है, मगर जुर्म नहीं है। एक सादा से इम्तिहान के जरिए यकीन तक पहुंच सकते हैं।
कैसे?
यूं करो, कल अबू उमरा को मैदान में भेजो, मगर घोड़े पर नहीं, पैदल। कह दो कि अजम अफराद घोड़ों से उतर आएं और दुश्मन से लड़ने जाएं, और फिर अबू उमरा की अपने सिपाही सालार के हुक्म की फरमा बरदारी या नाफरमानी उसकी अंदरूनी नीयत को जाहिर कर देगी।
कोई हुक्म है मेरे लायक अमीर?
क्या तुम तैयार हो बहादुर?
बेताब हूं अमीर, खास तौर पर जबकि मुझे बिना शर्त से लड़ना है।
मैं जानता हूं अबू उमरा, मैं जानता हूं तुम शिर्क के कातिल हो। तुम्हारे हाथों से वो लोग मारे गए हैं जो फर्जंदे रसूल के कत्ल में सबसे ज्यादा बेचैन और बेकरार थे। मुझे शक नहीं है कि यह खबीज बिना शर्त भी तुम्हारा ही शिकार है। सिर्फ एक शर्त पर तुम्हें उससे लड़ने के लिए भेजूंगा।
कैसी शर्त अमीर?
पैदल मैदान में जाओगे, घोड़े पर नहीं।
लेकिन मेरे सिपाही सवार होकर लड़ने में ज्यादा महारत रखते हैं।
अबू उमरा, तुम्हें मुझ पर भरोसा है या नहीं?
जुटलाने वाले पर लानत हो। अगर आप पर भरोसा ना होता तो क्या मैं आपकी रकाब में होता?
मैं ये समझता हूँ, अगर तुम और तुम्हारे आदमी पैदल मैदान में जाओगे तो ज्यादा ताकतवर होगे।
लेकिन मैं और मेरे
लेकिन की बात मत करो। अगर नहीं जाना तो मत जाओ। मैं खुद इस बाजी के लिए बहुत बेचैन हूँ।
नहीं शेख, आप अमीर के पास खड़े रहिए और तदबीर बताते रहिए। अमीर को आप जैसों की ज्यादा जरूरत है। हम जा रहे हैं अमीर, पैदल ही जाएंगे।
सब लोग घोड़ों से उतर जाएं।
आप मजाक कर रहे हैं अमीर?
जो कह रहा हूं वो ही करो मेहरान, उतर जाओ घोड़ों से।
जो हुक्म, आप इतने गुस्से में क्यों हैं? क्या ये पूछने का हक है हमें?
हक तो वो है जो अल्लाह ने हम पर वाजिब किया है। हम सिर्फ ऊपर वालों के अहकामात मानने पर मामूर हैं। सब उतर जाएं घोड़ों से।
सब उतर जाएं।
इब्न अशास, मुसाब की बात में मत आओ। उसे हमारी और हमारे कबाइल की हिमायत की जरूरत है।
फिर ये बेशरम शख्स उस बेगैरत के पास पहुंचा हुआ है।
गलत क्यों सोचते हो? खुदा हाफिजी कर रहा है, जुर्म है क्या?
देखो शबस, अब मेरी अरबी रग फड़क गई है, अब मुझे ना रोकना। इब्ने सुबैर की बातें मेरे लिए उस शेर को देखकर डर जाने वाले खच्चर की सी हैं। जमीन पर सुमे पटकता है और खुर खुर करता है। आज ये साबित कर दूंगा कि बनी सुबैर इराक में हमारे बगैर कुछ नहीं है। जाओ मुसब को बता दो कि हम तैयार हैं।
जी अमीर।
लोग डर रहे हैं कि हम भाग जाएंगे।
कुछ समझ नहीं पा रहा मैं। मुझे मुख्तार की फिक्र हो रही है मेहरान। इन लोगों की मुख्तार से बेहद सिर्फ कौम और कबीले की बुनियाद पर है। आज हम ये साबित कर देंगे कि ईरानी की मुख्तार से बेहद बेहद ईमानी है।
पैदल क्यों आया है?
मुमकिन है ये कोई चाल हो।
शायद, और शायद मुहल्लब के गैर मरई तीर निशाने पर लग गए। बहरहाल इनके पीछे की जानिब ज्यादा ध्यान रखना।
अगर तुम में जरा सी भी गैरत होती तो अपने बेटे को खुद से पहले मरने न भेजते। वो नौजवान है और हजारों ख्वाब रखता है,
तुम मरने के ज्यादा हकदार हो। अगरचे इसका भी जिंदा रहना आफत से कम नहीं।
मुंह बंद करो मजूसी अजम। आज तक तुमने जितने भी हमारे लोग कत्ल किए हैं उसके बदले तुम्हारे सर को अपने बाप के हवाले कर दूंगा।
इंसाफ नहीं है।
तुम चाहो तो मंजूर ना करो।
कोई बात नहीं, अब आपकी नजरों की तेजी अबू उमरा की तलवार से ज्यादा खतरनाक है।
दिनों का सा रूप धार लिया है कियान। तुम्हें याद है हम कितने बेचैन थे मैदान जंग में जाने के लिए?
अच्छी तरह याद है अमीर। आजकल मैं फिर से इतना बेचैन हो गया हूं कि गोया मेरे अंदर का जंगजू मेरी तलवार पर टेक लगाए है और मेरे घोड़े की जीन पर सवार बैठा है।
तुमसे क्या मख्फी है, आजकल मैं भी किसी पिंजरे से आजाद हुए परिंदे की सी हालत रखता हूँ। उस मनहूस औलाद से लड़ने के लिए बजाते खुद बेताब हूँ।
अमीर, मजबूरी है, आपको अपना दिल मारना ही होगा। आपको कुफे में ही रहना चाहिए। अगर आप मैदान में गए तो मुहल्लब समझेगा कि आप अपनी पूरी ताकत के साथ मैदान में उतरे हैं और यह हमारे हक में ठीक नहीं होगा।
मैं जानता हूं कि आन तुम ठीक कहते हो। मुझे मजबूरन कुछ मदद के लिए अगरचे छोटी ही क्यों ना हो कुफे में रहना होगा,
इसीलिए मैं चाहता हूं कि तुम फौज के सिपे सालार रहो।
गुस्ताखी की माफी चाहता हूं अमीर, आप एक बार फिर मुझे माफ कर दीजिए। हमारा मुकाबला एक मुझी दुश्मन से है। मुहल्लब को सिर्फ ये खबर मिलने की देर है कि हमारी फौज का सिपा सलार एक ईरानी है, फिर वो अरब और अजम का खेल शुरू कर देगा और फौज को दरहम बरहम कर देगा। इजाजत दें कि एक गुमनाम सा सिपाही रहूं जो आखिरी सांस तक अपनी बेहद पर बाकी रहे।
मरहबा क्यान, तमाम तारीकियां हमेशा से दिल की रोशनी के आगे मकलूब रही हैं। तुम्हारी ये रोशन दिली को या वो दुर्र नायाब है जो तुमने दर्द के दरिया की गहराई में पाई है, मुबारक हो तुम्हें।
माफ कीजिएगा अमीर, मुझे आपके हुक्म के बगैर हिलना नहीं चाहिए था, मगर अपने दिल की घबराहट के आगे हार गया। क्या हुआ है? क्या पैदल क्यों गया? मैदान से कोई खबर क्यों नहीं आती?
जरा हौसले से काम लो बंदाए खुदा, अबू उमरा अभी तो मैदान में गया है, उसकी कामयाबी की इत्तला करीब आने वाली है।
वो पैदल क्यों गया है?
सिर्फ एक अहमकाना सुएज़न की वजह से। मुझे भी फिक्र होने लगी बिन कामिल, तुम और तुम्हारे आदमी अबू उमरा की मदद को फौरन जाओ।
जी अमीर।
Thank you.
कियान। ये तुमने अपने साथ क्या किया मेरे भाई?
अबू इसहाक की खबर लो मेरे भाई, कहीं ऐसा ना हो कि वो अपने ही मुनाफिकों के हाथों मغلوب हो जाए।
लेकिन तुम क्यों ज्ञान? तुम्हें तो अरब के मुतासिब मुनाफिकों की जहालत का पता था, तुम क्यों उनकी माकत के आगे तस्लीम हो गए? घोड़े से क्यों उतरे?
तुम्हें याद नहीं मालिक अश्तर ने सिफैन में क्या किया?